ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृतार्षिणीभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रधायते कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे। एक श्लोक आया है प्रयुज्यमाने नपत पंच भौतिक प्रयुज्यमाने पार्श्वदे प्रयुज्यमाने श्लोक मुझे पूरा तुमको याद है नहीं श्रीमद् भागवत है तो देख नारद जी के चरित्र में है पहले छठे अध्याय 29वें श्लोक तो प्रयुज जमाने माने उनका परिकर का देह प्राप्त होने के बाद में नपतत पंच भौतिक उनका पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गिर गया यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जीव गोस्वामी की और सब जगहों में टीकाएं ऐसी है ये जो पार्षद देह है ये वैकुंठ में जीव गोस्वामी के प्रति संदर्भ में शायद मुक्ति के संबंध में है कि वैकुंठ में वहां भगवान के ज्योतिरूप से निकलकर कोटि कोटि सिद्ध परिकर देह है। जब कोई सिद्धि लाभ करता है तो वो भगवान कृपा करके वहां का जो शरीर है अपराकृत वो इस जीव को मिला करके दे देते हैं। के प्रसंग में करता है पार्षद देव के ये पार्षद देव वहां है वैकुंठ में असंख्य है जो भगवान की ज्योति से प्रकाशित होता है और जब यहां कोई साधक सिद्धि लाभ करता है तो वो वैकुंठ वाला जो पार्षद शरीर जो निर्जीव सा रहता है उसमें जो जीव है जीव माने प्राण है या चेतनता है किंतु अचेतन जैसा पड़ा रहता है वहां जब ये सिद्धि लाभ करता है तो वो अचेतन जैसा किंतु चिन्ह में शरीर लगते ही फिर वो क्रियारंभ करता है उसी शरीर से भगवान की सेवा करता है जीव गोस्वामी का प्रति संदर्भ में ऐसा उल्लेख है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सप्तम गोस्वामी है गोस्वामियों से कम नहीं है विनोद मंजरी भी कमल मंजरी भी हैं उन्होंने ये कहा है कि जीव स्वरूप में जो नित्य परिकर हैं जो बलदेव जी से प्रकटित हुए हैं कोई गोलोक वृंदावन में कृष्ण की उससे सेवा कर रहे हैं नित्य सिद्ध शरीर से और कुछ लोग द्वारका में और कुछ लोग वैकुंठ में ये सभी नित्य हैं और परिकर वहां पर ये जीव शब्द का उल्लेख नहीं, वहां पर सभी परिकर कहलाते हैं। उसमें कुछ साधन सिद्ध भी हैं, कुछ नित्य सिद्ध भी हैं, कुछ बलदेव के कायव्यूह हैं प्रकाश, और कुछ राधा जी के कायव्यूह प्रकाश हैं। वहां पर जो तटस्था शक्ति से निकले हैं उनमें कुछ जीव भगवान की तरफ में देखा वो भगवान की तरफ में चले गए, और जो जगत की तरफ में देखा उससे आकर्षित हो गए इसमें आए। किंतु उनमें भी जीव के स्वरूप में जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, वो है किंतु पोटेंसी के रूप में है। जैसे बीज में सारा वृक्ष उसमें रहता है, फल फूल ये सब कुछ रहता है, ऐसे उस पोटेंसी में जीव के सब कुछ है किंतु विकसित नहीं है। जैसे बीज में वृक्ष विकसित नहीं होता, ऐसे बद्ध जीवों में विकसित नहीं होता, वो गुरु की कृपा से क्रमशः साधन भजन के द्वारा जबकि रति की अवस्था में जाता है भावावस्था में, तो उसकी वह अनुभूति करता है। गुरु भी उसको बतलाते हैं ये तुम्हारा सिद्ध देह है, एकादश भाव उस समय में देते हैं ने? और वो अनुभूति करता है उस समय। फिर चार पांच भाव और हैं पा करके इस जगत को छोड़ करके उसका नित्य जो शरीर है नित्य सिद्ध देह वो प्राप्त करता है। हमारे सभी गोस्वामी यहाँ तक कि बलदेव विद्याभूषण ने भी ब्रह्मसूत्र के गोविंद भाष्य में ऐसा लिखा है जो हम बतला रहे हैं, ये कैसे जीव का स्वरूप नित्य है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया उसमें समस्त अंग प्रत्यंग सब चीन में है जीव के स्वरूप में अभी भी पोटेंसी के रूप में, और उनका कृष्ण के प्रति जो सेवा का भाव है सिद्ध देह का भाव वो सब उसमें है। अब जीव गोस्वामी के साथ में रिकॉन्साइल कैसे करेंगे। जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं वहां पर परिकर देह है, जब सिद्धि प्राप्त करता है तो दोनों मिल जाते हैं, तब वो उस के द्वारा सेवा कर सकता है, उसके पहले सेवा नहीं करता है, तो ये कैसे रिकंसाइल करें। श्याम दास बोलो बोलो, माइक दे दो। पढ़ा है तुमने ये सब विषय, प्रति संदर्भ देखा, और जीव गोस्वामी का ये विचार, और भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ा है भाष्य वो है? नहीं इसमें है शिक्षा, ये पढ़ना जरूर। हाँ बोलो बोलो तो देखें, ये बताए जीव गोस्वामी तो जखन एतटुक बुझते पर तक और बुझे अत कर विस्तृत कर। जीव गोस्वामी जा बोले छे परिकर देह छे बैकुंठे, जीव सिद्धि लाभ कर ले वही जीव के भगवान वहीटा दिए दें, परिकर मिलिए दे स्वरूपटा बैकुंठे आछे, एटा तो एखाने आछे। जखन सिद्धि लाभ करे तो वही परिकर देहटा जीव संगे प्रयुज्य कर दें, प्रयुज्य माने आर ए पंच भौतिक शरीर दूर पड़े जाए। एक अभी तुम्हारा बुझो नहीं पागल बुझते पारो ना, जीव गोस्वामी जा बोल उनार विचार एक, और हमारे और गुरु वर्ग जहारा आछे ऊपर थे के बलदेव विद्याभूषण थे के निये और भक्ति विनोद ठाकुर पर्यंत एक विचार, ওরা বলছে যে জীব স্বরূপে নিত্য তার সিদ্ধ শরীর আছে, নূতন করে কিছু দেবার নাই, ও শুধু বিকাশ হলে মায়া কোন রকম সরে যাবে, ওর যা শরীর আছে এটি আমাদের সব আছে। কিন্তু জীব গোস্বামী বলছে যে তখন পর্যন্ত কোনো কিছু নাই, ওই যখন পরকর দেহ পায় ওখান থেকে বৈকুণ্ঠ থেকে যে আছে ভগবানের জ্যোতি থেকে যে বেরিয়ে ওইটা প্রয়োজন, যখন ওই পরিকর দেহ জীব সঙ্গে মিলিয়ে দেয় তখন জীব ভগবানের ওই শরীরের দ্বারা সেবা করতে পারে। আর গোচার যে বিচার আমি পূর্বে করব।
এখনো বুঝেছে কিনা, ওসব অনুশীলন না হলে কি বুঝতে পারবে?
দিন রাত এইসব অনুশীলন করলে তাহলে এইসব গুলি কঠিন বিষয় বোধগোপ মেহ। মাধব মহারাজকে তো আজকে সকালবেলা বলেছি, হ্যাঁ এই জন্য পাত খাড়া করছেন যে আমি বলব। ও মাইক দেব
ভাগবত অনুশীলন না করলে আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের টিকাগুলি তোমরা এত যে তুমি তো পড়া লিখা সংস্কৃত, তোমাকে হাজার বার বলি কি একটা বাজে কাজ নিয়ে আছে মূর্খ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত।
তোমাকে এসে বলতে
হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। আমি আপ লোক শ্রী মহারাজ কে মুখার শ্রবণ কে শ্রীজি গোসাই পাজি अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं कि जीव जब अपने सिद्धि प्राप्त करते, सिद्धि भी दो प्रकार के, एक वस्तु सिद्धि और एक स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि तो भाव का अवस्था तक भी उपलब्धि हो जाती है और प्रेम में तो पूर्ण रूप से उसका उपलब्धि किया जा सकता है, और वस्तु सिद्धि जब इस शरीर को सिद्ध शरीर के पाने के बाद जब किसी गोपी गर्भ में जन्म होता है चक्रवर्ती पादी का भाव किसी भी ब्रह्मांड में, और वहां पर निश्चित परिकरों के संग में जब उनका संग प्राप्त होता है तब जाकर के उस लीला में प्रवेश होता है नित्य लीला में।
गोविंद माधव माधव प्रियो इज हियर वेयर नोट डाउन विल हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। बोलो
श्री चक्रवर्ती पाद जी का भाव है, पहले तो हम स्वरूप सिद्धि करते साधन करते करते आदो श्रद्धा तथा साधु संगता भजन की अनट निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, उसके बाद में भाव के अवस्था में जाके स्वरूप के कुछ उपलब्धि होती है, लेकिन भाव में भी कुछ कुछ कसाय रह जाता है, इसलिए आगे प्रेम में जाकर पूर्ण रूप से वो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए इस जगत में केवल व्यक्ति में भाव तक ही देखा जाता है। नारद जी का जो बोर्ड है प्रयुज्य मानव भाव के अवस्था में उस शरीर को त्याग दिया, प्रेम तक नहीं पहुंचे, प्रेम के बाद में जब परिकर का संग हुआ उनका जो भी तब उसके बाद प्रेम। इसलिए यहाँ बोले अभी पक्क कसाया नाम दुर्दर्शो अहम कुजोगी नाम हंतिम अस्मिन जन्म निनंद पांग माम दृष्टु मारक। आकाशवाणी में जब साधना में थे और भगवान के जब चिंतन कर रहे थे तो वहां भागवत में वर्णन आता है तस्मिन निर्मले निर्मनुज रण्य पिपलोपस्थ आस्थिता आत्मान चिंतन रूपम जथा स्फूर्तयत। जैसे उन्होंने गुरु मुख से सुने चतुर्मास के महीने में उसी तरह उस रूप को चिंतन कर रहे, तो करते करते उनके अनर्थ की निवृत्ति हुई और भाव की जब अवस्था में आ गए तो उस समय एकदम उनके रोमावली खड़े हो गए। जो भाव के कुछ विकार हैं जैसे गुरु गोस्वामी जी कहते प्रेमस्तु प्रथम अवस्था भाव इत्यादि धीयते सात्विका स्वल्प मात्रा से अत्र अश्रु पुलका दे, उसमें उनके रोमावली खड़े हो रहे, अश्रु पुलक आदि हो रहे और भाव में विभोर होकर उस रूप के चिंतन में डूब गए, लेकिन कुछ क्षण बाद ही वो रूप अंतर ध्यान हो गया। जब वो व्याकुल हुए तो ये सुनने को मिला अभी पक्के कसाया नाम दुर्दर्शो अहम कुजोगी ना, अब तुम इस शरीर से और मुझे दर्शन नहीं करोगे, तुम प्रतीक्षा करो। तो यहाँ पर जब इस शरीर का पास होता है तो उस समय वो वस्तु सिद्धि को उपलब्ध कर स्वरूप सिद्धि को उपलब्ध करने के बाद जब जिस भाव वाले होते हैं, जैसे कोई अगर गोपी भाव से आराधना कर और सखा भाव से, तो फिर ब्रज परिकरों में जो निश्चित प्रकट जब आते हैं लीला जगत में, मतलब अब प्रपंच जगत से जब प्रपंचिक जगत में लीला के लिए जब उतरते हैं, जैसा कि सभी आचार्यों का भाव है अप्रपंचात प्रपंच अवतरणम इत्यादि लीला अथवा अवतार होते हैं, तो वहां पर वो जब जन्म ग्रहण करके उनके अपना सब परिचय मिलता है सही रूप में, और जब वो रास आदि लीला में प्रवेश करते हैं उसमें जो माया में पूछते तू कहाँ के, तुम्हारा माता जी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, इस प्रकार से वहां पर सिद्धि को वस्तु सिद्धि को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बतलाए, जिस समय उनके यज्ञशाला में भगवान प्रकट हुए, जब वो 99 यज्ञ कर चुके थे, सोमा करना चाहते थे लेकिन इंद्र करने नहीं देना चाहता, बार बार घोड़ों को चुरा लेते, चक्कर में बजी तास, कई बार उनको मार करके और कई बार कई भाव से घोड़े को लौटा कर लाए और बार बार उसने रूप बदला। तो वहां पर जब भगवान उनसे बोले कि तुम्हें 100 जग की क्या जरूरत है, 99 ही रहने दो और तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। तब उसमें पृथ्वी महाराज जी बहुत अच्छी बात बतलाए, वहां बोले भगवान मुझे नहीं कुछ चाहिए, ना कामय तरफ अहम ना तो क्वचि न जत्र जुस्मत चरणा मुजासव महत्तम अंतर भयान मुखा चुतो विदत सबो कर्ण अजूत में। और उसके बाद में जद उत्तम अश्लोक भवान ममेरितम स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान कुजोगी नामनो वितरत अलंबरे। कहते जद उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम बोज सुधा कना लीला। अगर आपके भगवत भक्तों के संग में आपके कथा में सुनने को मुझे मिलता रहे तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल इतना वरदान दे करना अजूत ए समय बरा। बोले कथा क्यों सुनना चाहते हो? बोले उससे ये होता है स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमाना। हम लोग जब भगवान से बिछुड़ के माया को जब आए और माया ने जब झपड़ के पकड़ा, निकस्थत माया तारे झपटिया धरिया, जिस समय पकड़े तो उस समय जीव क्या हुआ अपनी स्मृति को विस्मृत कर गया। जब तक वो माया नहीं पकड़ी तब तक तो ठीक था, समझता था सब कुछ, लेकिन जैसे माया को आया तो क्या विस्मृति। तो बोलते हम जो विस्मृत हो गए उस विस्मृति को गुरु वैष्णव स्मृति दिला देते। चैतन्य चरितम में एक बात आया, नित्य कृष्ण प्रेम साध कबूना। ये जो कृष्ण प्रेम जो हमारा प्रीति सिद्ध है, ऑटोमेटिक हमारा जो महाराज जी बोले थे भगवान के साथ संबंध है, लेकिन उस संबंध को हम विस्मृत हो गए। कब विस्मृत हुए? जब माया ने पकड़ा। अब है ना सही अनादिर महिमुख अतः माया ताल दे संसार दुख। जब जी उनसे विमुख हुआ तो माया ने पकड़ा, पकड़ा तो जो स्मृति था उस स्मृति में चला गया। इसलिए हाँ रूप गोस्वामी जी यही बोले भक्ति रसामृत क्या कृति साध्या भवेत साध्या भावा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य मृति साध्यता। ये जो हमारा भाव है क्या नित्य सिद्ध है, इस बात को ध्यान दीजिए। भाव कोई सिद्ध करने की वस्तु नहीं, सिद्ध है हमारा जो सेवा वो सिद्ध है, लेकिन वो विस्मृत हो गए। उस विस्मृति को गुरु वैष्णव लोग कथा के माध्यम से जगा देते हैं। जैसे सूर्य बतांग स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्थान तो ही भद्राणी बुद्धि नोति सार्थम। और जितना जितना हम कथा सुनते जथा जथा मृजत्व आत्मा मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा प्रस्तति वस्तु सूक्ष्म चतुर चतुर्थ अंजन संप्रयुक्त। जितना जितना भगवान की कथा सुनेंगे उतना उतना हमारा चित्त जो हो क्या होगा शुद्ध होगा। अशुद्ध होते के साथ अनर्थ आदि निर्वृत्ति को होगा। जब भाव की स्थिति में आएंगे तो हम उस सूक्ष्म वस्तु को अपने स्वरूप को जब दिखाई नहीं पड़ रहा है वो दिखाई पड़ने लगती। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाप्रभु जी सभी आचार्यों ने बोला कुछ स्वरूप उस उपलब्धि के लिए जो हम भूल चुके उसकी स्मृति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भगवान के नाम कीर्तन। इससे और कोई संसार में दूसरा वस्तु नहीं चित्त को शुद्ध करने वाला। लेकिन ये नाम संकीर्तन तभी पूर्ण फल देने में समर्थ है जब साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे। प्रेम विवर्तन में
मितम च तुम ऐसा जो ऐसा करो तो 5 दिन में
अभी 1 सेकंड में खत्म कर।
इसलिए ये सब जो मूल विषय है उस पर आओ, ये तो तुम 10 दिन में नहीं समझ।
यहाँ पर जो हमारे स्वरूप की उपलब्धि उसके करने के उपाय है नाम संकीर्तन। उससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्म परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आपको जो भी चाहिए सबसे बड़ी चीज हम जिस चीज को भूल गए अपने स्वरूप को, उस स्वरूप के नाम जो है भगवान की कथा को स्मृति दिला देते हैं। लेकिन स्मृति तभी हो सकती है जब वैष्णव संग में एक कथा सुनेंगे। इसलिए पृथ्वी महाराज जी बोल रहे हैं कि महत मुखच्युतो महापुरुषों के मुखारविंद से यदि निर्धारित कथा सुनने को मिलता रहे तो अलम बरे। संसार के फिर कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वस्तु की स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान। जिस तत्व को जिस स्वरूप को हम भूल गए उसको स्मृति करा देते हैं। तो ये दोनों आचार्यों के जो अपने अपने भाव है, अच्छा एक जगह पर ये बोल रहे हैं कि साधन करते करते भाव तो साधन की अवस्था, भक्ति तो साधन की अवस्था से आस्वादनीय है। स्वरूप मिलने के बाद तो हो गए, लेकिन अभी भी जो कर रहे हैं वो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन अंतर इतना होता है पक्व अपक्व विचार। अभी कच्चा थोड़ा स्वादन हो रहा है और जब वस्तु सिद्धि हो जाएगा तो पक्का स्वादन होगा, वहाँ पूर्ण रूप से स्वादन हो रहा है, यहाँ स्वादन हो रहा है लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर्मस कसाय आदि है जिसमें मिश्रित भाव से स्वादन होता है। तो जीव गोस्वामी जी का जो भाव है वो भी कहना ठीक है कि जब तक आप उस स्वरूप को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वो वस्तु सिद्धि नहीं मिलने वाली है, तब तक जब तक उस स्वरूप के साथ जो हमारे वहाँ गोलोक धाम वृंदावन में जो एक रूप पड़े हुए हैं उसके साथ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वास्तविक स्वादन नहीं होगा, वो भी ठीक है लेकिन साधन की अवस्था में भी इस चीज का स्वादन किया जा सकता है क्योंकि भक्ति चिन्मय वस्तु है, उसका थोड़ा भी टच करेंगे तो भी वो परम परम स्वादनीय लेकिन उसमें महा महा स्वादनीय होता है। तो दोनों का कहने का अपने अपने जगह पर ठीक है, बाकी महाराज जी जो कुछ बोलेंगे वही।
इसमें एक प्रश्न होता है,
हाँ जी
प्रश्न ये होता है कि यदि जीव का स्वरूप बैकुंठ गोलोक में वहाँ सुरक्षित है और जीव यहाँ पर है तो वो पार्कर शरीर और ये अलग अलग हुए,
अलग अलग ठीक है
अलग अलग हुए
जी।
किंतु हमारे गोस्वामी कहते हैं जी अलग नहीं, जीव के स्वरूप में ही सब कुछ है, तो इसका सामंजस्य कैसे हो?
ऐसा चिंत वस्तु के बल तो सर्वगत है, आत्मा जैसे सर्वगत है तो अवस्थित हो सकते हैं।
ये उत्तर नहीं है,
हाँ जी
ये उत्तर नहीं है।
आप
बोलिए तो कुछ, तुम लोगों के समझ में कुछ आ रहा है खाक पत्थर कि नहीं आ रहा
है?
हाँ तो वही मैं बोला तो अच्छा, हम चाहते हैं समझ तुम्हें कुछ बोल बे, तुम्ही कुछ बोल बे
जिन तत्व के विषय में।
महाराज एक चीज है जब इसमें है तो फिर वहाँ अलग तुम बता रहे,
तो यही तो यही तो कहा मैंने,
तो आप बता दीजिए
तो इसीलिए तो बतलाने के लिए तो
सब लोगों का विचार सुन रहा है,
लोग समझे प्रश्न ही नहीं समझ पाए।
से नारद जी ने नारद जी के विषय में जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, प्रयुज्य माने महित्वाम श्रद्धाम भागवती तनु
ये
आरब्ध कर्म निर्वाणो नपतत पंच भौतिक, प्रयुज्य माने महित्वाम श्रद्धाम भागवती तनु। जबकि श्री नारद जी भजन साधन कर रहे थे, भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि हे नारद तुम्हारी उत्कंठा के वजह से मैंने तुम्हें दर्शन दिया, इस जन्म में तुम साधन भजन करते करते उस समय की प्रतीक्षा करो जबकि सत्सेवया अदीर्घया दीड़ा मई जाता न, अति अल्प काल में साधु संतों की सेवा करते करते मेरे बीच में तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए, दृढ़मती हो जाए, सुदृढ़मती हो जाने के बाद में तुम मेरे पास आ जाओ, मत जनताम गंता से मेरे प्रिय परिकर बन जाओगे, मेरे निकट में आ जाओगे, ये बता दिया। इसके बाद में श्री नारद जी ने मंत्र जप किया और हरिनाम करता रहा और करते करते काफी समय निकल गया और समय की प्रतीक्षा, तब उस समय वर्णन आता है प्रयुज्य माने महित्वाम शुद्धाम भागवती तनु। उस समय नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा पांचवर्ती शरीर जो पिंजरे के रूप में यही पड़ा रहा और इसमें से मैं पंछी की तरह निकल करके चला गया, मेरा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया भागवती तनु, वह दिव्य शरीर जो ज्योतिर्मय स्वरूप भागवती स्वरूप मन जो पार्षद देह, उस पार्षद देह में वे भगवान के लोग तो गए। अब देखा जाता है कि साधन के द्वारा यहीं पर उनका स्वरूप प्रकट हुआ है, वहां जाकर के उनको मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, परंतु यहीं से प्रकट हुआ। दूसरी बात है जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया 11वें स्कंद के अंत में, जबकि प्रभास में वे जाने लगे नित्य धाम को, जाते समय जो अंतिम श्लोक आता है उपदेश का जो अंतिम श्लोक, उसमें ये वर्णन आता है मर्तो जदा तत्त समस्त कर्मा निवेदिता आत्मा विचिकीर्षितो मे तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पति। इस श्लोक की टीका लेकर के बहुत दिनों तक चला महाराज श्री ने दर्शन कराया भागवत के टीका पर, पांचवें स्कंद में वो टीका है और उसको दिखाया। उसमें ये अच्छी बातें आई हैं कि जबकि इस मानव देह को प्राप्त होकर मनुष्य गुरु चरणों में शरणागत होता है, जितना जितना अपने को आत्मसमर्पण कर देता है उतने परिवार में भगवान भी उसको अपना लेते हैं। और विचिकित्सितों विशेष कुछ किया करते हैं, भगवान भक्तों के लिए विशेष करते हैं। वो विशेष क्या करते हैं, भक्त सोचते हैं कि मैं इस प्राकृत शरीर से इसी शरीर से ही भगवान की सेवा पूजा कर रहा हूं, पर इस पांचवंत शरीर से भगवान की सेवा पूजा नहीं हो पाती। वो तो शुद्ध हृदय से शुद्ध भाव से ही शुद्ध स्वरूप से ही होता है, परंतु तो भक्त समझते हैं कि हमारा पांचवंत शरीर है यही, इसी शरीर से ही हम कर रहे हैं, परंतु करते हैं आत्म शरीर से, उसकी भावना होती है कि मैं इस शरीर से कर रहा हूं, परंतु ये भगवान उसके स्वरूप को प्रकट करा देते हैं और मंत्र जप के साथ साथ साधना के साथ साथ उसका स्वरूप प्रकटित होता है, उसका विकास हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो कुछ भी नहीं जानता, ये बच्ची, और जब आगे बड़े बड़े हो जाए किशोर किशोरी बन जाए तो उस समय उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, संसार का पूर्ण अनुभव आने लगता है। भक्ति राज्य में जबकि आसक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, निष्ठा रुचि आसक्ति में, तो उस समय उसको पूर्ण अनुभव होता है, भाव का भी पता लगता है और आगे का स्थिति सारा जानकारी मिलता है। तो उस समय बोले कि साधन भजन करने वाला व्यक्ति उस समय साधक के विचित्र स्थितों में तदा मृतत्व अमृतत्व को प्राप्त होता है। अमृतत्व क्या है, पांच प्रकार के भाव, शांत दास संत वात्सल्य मधु, ये पांचों अमृत के रूप में वर्णन किया गया है। इनमें से साधक जीव कोई न कोई एक भाव को प्राप्त कर लेता। अब कहा गया जैसे उसके स्वरूप का विकास हुआ, स्वरूप के विकास के साथ साथ उसके हृदय में वो भावना भी प्रकट होती है, कोई न कोई एक भाव कृष्ण के प्रति एक निष्ठ होकर के प्रकट होती, उसी को अमृत कहा गया। अब महाराष्ट्र का जो कहने का है, प्रश्न जो आया है कि जीव के शुद्ध स्वरूप और उसका जो बीज रूप में सन्निहित है शुद्ध भाव इत्यादि, सब कुछ बीज रूप में सन्निहित है, अभी कोई विकास नहीं हुआ है, जबकि साधन भजन करते हैं, साधन भजन के द्वारा धीरे धीरे विकसित होता है। हाँ ये बात सत्य है, गुरु का गुरु की कृपा और भगवान की कृपा दोनों ही सन्निहित है। जैसे शुद्ध सत्य के बारे में वर्णन हुआ है कि भाव दशा की प्राप्ति होती है, शुद्ध सत्य क्या है कि ग्लादनी एवं संबित के सार्वत्य स्वरूप जो कृपा करुणा है वही हृदय में आती है। वो कृपा करुणा किसकी है, दादाजी, सीधे रूप से दादाजी की कृपा करुणा हृदय में आ जाए वही शुद्ध सत्य। अब कहने का है वहां से तो आता है और यहां से प्रकट होता है, साधन भजन के द्वारा जीव का ये शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। जब शुद्ध स्वरूप का प्रकट होता है उसके अंदर का जो भाव है वो प्रकट होता है, विकसित होता है। तदा मृतत्व प्रतिपत्त मयात्मति अमृतत्व को प्राप्त होकर के जब उत्कंठित होकर के भजन करता है उसके अंदर विरह उत्कंठा बढ़ जाती है कि एक साधन भक्त भगवान के सानिध्य में पहुंचना चाहता है, जबकि तीव्र विरह उत्कंठा लालसा बढ़ जाती है उस समय भगवान क्या करते हैं, मयात्मभूया देव कहते हैं कि मैं अपने समान बना लेता, उस समय उसको पार्षद बना करके मैं अपने पास ले आता और मेरा परिकर बन जाता है, मेरी समता को प्राप्त होता है, यानी मेरे परिकरत्व को प्राप्त हो जाता है। तब देखा जाता है कि साधन भजन के द्वारा वो बीज रूप में सन्निहित जो वस्तु है वो विकसित होता है, विकास के साथ साथ भगवान भी उसमें जोड़ते हैं। इसलिए दोनों का कहना सही होगा कि वहां से भी कुछ कृपा शक्ति करुणा शक्ति आती है, जिसके साथ मिलने पर तभी ये विकसित होता है। शुद्ध सब सब कुछ है परंतु आज विकसित नहीं है, जब तक गुरु जी कृपा करके जब खींच करके लाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हुए कहां हमें कोई पता भी नहीं, कौन भगवान है, कौन महाप्रभु है, कौन राधा जी है, कौन कृष्ण है, किसी का कुछ भी बताना, कौन साधु है ये भी जानते नहीं। जबकि यहाँ ला करके केशा दर्शन करके अपने चरणों में स्थान दिया, समझाया, इतने दिन पढ़ते पढ़ते आज हम लोग कुछ समझ रहे हैं कि ये जीव है वो मुक्त जीव है, ये बद्ध जीव है, दुनिया भर के इस पुण्य लगे समझ पर तो इससे पहले तो कुछ पता नहीं। इसी प्रकार गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ विकसित होता है। अन्यथा जीव का स्वरूप तटस्थ सत्य के रूप में जो दिखाया गया, तटस्था सत्य से जीव आया, ठीक है, परंतु तटस्था सत्य का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल अवस्था जिस स्थिति में कोई भी विकास नहीं है, न उस पार में गए न इस पार में आए, विकास भी जैसे वृद्धारण्य उपनिषद में दिखाया, छांदोग्य में दिखाया, उपनिषदों में ये सब वर्णन आया है, सृष्टि प्रकरण में ऐसे तृतीय स्कंद भागवत में भी इसका वर्णन आया है कि जैसे अनंत करोड़ जीव पड़ा हुआ है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है न विकास हुआ है। जबकि वेदांत में गोविंद भाषा में भी कहते हैं ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म पांचों तत्व का वर्णन किया है, तो उसमें जब ये वर्णन होता है कि जीव तो उसी अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में पड़ा हुआ है, उसका कोई हिस्सा भी नहीं। जब भगवत इच्छा होती है तब यहाँ आकर के जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में उसका विकास होता है, कर्म जगत में आकर के धीरे धीरे विकसित होते होते चेतनता का विकास होते होते मानव चेतना में आते। इसी बात को चेतन शिक्षा मृत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, पांच प्रकार के चेतन के विषय में वर्णन है, मनुष्य जीवन में विकसित चेतन दिखा है और आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश होता है
आगे बढ़ाओ
तो पूर्ण विकसित चेतन है। तो पूर्ण विकसित चेतन में जब के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है तब पूर्ण विकसित होता है, इसी तरह से चेतनता का विकास होता है और मानव जीवन को प्राप्त होता है। और मानव जीवन में आकर के यहाँ गुरु जी के चरणों में आकर के यहाँ शिक्षा लाभ करके योग्यता को प्राप्त किया जाता है, सारी सेवा की योग्यता सब प्रकार की क्वालिटी यहाँ योग्यता प्राप्त करने के पश्चात जीव तक भगवंत रूप को पहुंचता है, यहाँ सेवा के लिए पार्षद शरीर को प्राप्त करता है, तो यहाँ से ये प्रकटित होता है, कुछ साधु और कुछ कृपा दोनों ही होता है।
तुम कुछ बतला दो तो तू क्या करे तब तुम ढपोली बजाएगा तटस्थ से जो निकले हैं वो जीव तटस्थ से कुछ लोग तो वो बतलाए ना जैसे वो तो जल भी है फल कोई सुख छरे जल बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा जल पीछे घट जाएगा तो नीचे आ जाएगा इस पर वो निर्भर है।
अच्छा जो बात नहीं बताए थी कि ये पूरे यहीं पर स्वरूप हो जाते हैं उत्पादन और करो कर उसको मिलने के बाद होते हैं उनका एक ही सेंटेंस में सब बताए जो सही समझना।
अच्छा हम बतला तो थोड़ा सा बोल दो तुम जो क्या कहा उसका सार क्या है और हमने कैसे सामंजस्य किया है बोलो तो अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल दो ये लोग समझें कुछ बहुत अच्छा तुम्हारा सामंजस्य ठीक है किंतु उसको भाव पर ये बोला है ठीक सर थोड़ा सा प्रकट नहीं हुआ है अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किंतु बोला है सब ठीक प्रयुज्य माने दोनों को मिलाकर क्या भगवान की कृपा या गुरु की कृपा एक तो ये हुआ हजार साधन करने से भी नहीं हुआ तो ये साधन का परिश्रम और भगवान की या गुरु की कृपा दोनों मिलने पर परिकर शरीर मिलता है उसे भगवान की सेवा करता है। अब इसको व्यक्त करके करना है कोई भी लौकिक भाषा अपराकृत तत्व को व्यक्त करने में असमर्थ है उसमें कोई न कोई त्रुटि रहेगी कोई जीव गोस्वामी बोले या स्वयं भगवान बोले या कृष्ण बोले, वो तो अप्राकृत तत्व को कहेंगे। अप्राकृत जो व्यक्ति है वो तो समझ जाएगा, किंतु प्राकृत व्यक्ति नहीं समझेगा, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तटस्थ कहने से भी कुछ त्रुटि है। और जो कुछ कहते हैं कृष्ण की लीला हुई तो इसके पहले नहीं थी, और दूसरी बातें आ गई, इसलिए प्राकृत भाषा में कुछ मल है। साधन के द्वारा इस मल को दूर करके उस चीज की अनुभूति कर। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म इस विषय में प्रश्न अधिक मत करो, साधन भजन करो और भगवान की कृपा होगी, अनुभूति होगी। मैं पीछे बतलाऊंगा ऐसा ये बोल।
जनांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे माई हम लवी सेंसेस एंड द लोटस फीट ऑफ माई कंजुगल गुरुदेव एंड ऑल असेंबल सन्यासीज एंड वैष्णवस हियर एंड वैष्णवीज हु आर वेरी ईगरली वेटिंग टू लिसन फ्रॉम गुरुदेव लोटस लीफ सम हरि कथा। In the middle, in between that, I am an obstacle to take some time of you, but which Gurudev has ordered me, I shall try to explain at my level best.
So what is the question first?
So the Gurudev question is, Srila Jiva Goswami Pad, one of the six Goswami, he told that when Jiva is doing sadhana here, and in Vaikuntha planet, means Vaikuntha, Ajodhya, Dwarka, Mathura, up to Goloka Vrindavan, there are some parser, they came from affluence of Bhagavan, but they are in inactive position. When we will do bhajan and we will be perfect, then we can get any one of that parser deha, which is in Vaikuntha planet in inactive position. This one side, another side, other than Jiva Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Baladev Vidyabhusan Prabhu, up to now, Srila Rupa Goswami Pad, all acharyas up to now, even today, they are telling that no, Jiva has in constitutional form his full body, everything is there, but unmanifested form, in latent position. Just like in one seed, the potency of a full tree, even leaves, flower and fruits, everything is there, but in seed in latent position, not in manifested form. So, one side is Jiva Goswami Pad, another side other acharyas up to present Guru Varga. So it seems both are quite opposite. How I can reconcile these two points, two contradictory points? Actually, these two points are not contradictory at all. We are in mundane stage, in material platform. So we do not understand, it seems contradictory for us. But who is in that platform, or Guru Varga, for them, no contradictory at all. So which you have heard from Gurudev, I try to explain. Srila Bhakti Vinod Thakur, in the commentary of Sikshastak in first slok, Cheta Darpanam Arjanam Bhava Mahatabhagni Milbhavanam Sreya Kailava Chandrika Vitaranam Vidyavad Jeevanam Anandamudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam. Here Pratipadam Purnamrita Sadhanam, there is in his bhav stage. In this slok, there are seven stages explained from Cheta Darpanam Arjanam, Shraddha, Nishtha, Anathana, Bhakti, Bhajan, Kriya, etc., etc., up to Prem, in seven stage explained in one part. Here, Purnamrita Sadhanam, this is Bhava stage. So Bhakti Vinod Thakur told and explained in his commentary that according to sadhak's constitutional form, up to Gopika Deha Eva Prakatayati, who has Dasamur, his Dasa Bhav, Dasa Parsat Sari will manifest, who has friendly charm, who has paternal charm, who has calmer mood, will manifest in their heart according to their own constitutional form, which is in latent position at present time. It will manifest. Srila Baladev Vidya Bhushan Prabhu and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and others, all they told the same thing. And Jiva Goswami Pada told, no, there are some parsad there in Vaikuntha planet. When you do bhajan, then it, and in perfect, then we can get one body from there and it will contact both. We have seen in Narada Maharshi's character, the Napata Pancha Bhauktikam. His material body falls off and he received Parsad Deha and his material body fall off. So here, how we can reconcile this? Srimad Tirtha Maharaj quoted one slok that Martha Ledatapta Samasta Karma Nivejitatma Vichakir Chitome Tadamitatta Patipatta Mano Mayatma Bhoya Chakal Pateboi. I can explain it later, but which I have not good I try to explain. So Jiva Goswami Pada and chapter 4, how will reconcile this and other acharyas? Is Guru Krishna Prasad Brahmanda Bhamitekano Bhagavanji Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Beach. When we are wandering in this Brahmanda, not in this, in our Brahmanda, any fortunate jeev, by the causeless mercy of Guru and Vaishnava, Guru and Krishna, they receive the seed of Bhakti Lata. What is their desire to serve Krishna, desire to serve Sri Krishna? So, Guru Krishna, here Guru Krishna means two meanings. One is Guru, Sri Gurudev and Sri Krishna. One meaning, another meaning, Guru is Krishna here. What kind of Krishna? Ashraya Krishna. Vishaya Krishna is Swayam Bhagavan, Ashraya Bhagavan is Gurudev. So, sometimes it mentions the causeless mercy of Gurudev, sometimes mentions combined causeless mercy of Sri Guru and Sri Vishaya Bhagavan. We can get Bhakti Lata Beach. When we do Sadhan Bhajan, gradually it will increase in our position, then when it has achieved Bhavavastha, then what it will be? In Bhavavastha, Sukhna Sattva Visheshatma, Prema Surjansa Sammabhag, Ruchi Vishchitta Masrino Upidasa Bhava Uchyate. What happened in Bhavavastha? Samvitan Bhadini, combined Sambhidan Sradhini, when they reflect in Sandhini, means the entity or existence of Jiva, then it is called Bhavavastha. From where did you come? This Shuddha Sapta, or the essence of Sambhidan Sradhini, it lives. It always resides in the eternal associates of Sri Krishna. From there, it will manifest in our heart by the causeless mercy of Sri Gurudev and Sri Krishna. Then we can understand our own sarup. Before not that, we can only imagine little bit. So, what Jiva Goswami is saying, they will get that sarup. There are so many types of bhagavat parsad is there. And we can get one of how? Just like Bharata Maharaj, when he get lost of his baby dear, he was thinking and thinking about that and absorbed so much. After his death birth, he became a dear, but not became that same dear, he became another dear. Similarly, by causeless mercy of Gurudev and Krishna, when you sadhan bhajan here, and by causeless mercy of Gurudev, which you have heard Harikatha from him, then you can understand gradually, before even bhav says, what will be our sarup, we can understand which bhav, dasa, sokha, vapsala, madhu. And when bhavavastha will come, then manifest. Similarly, which parsata is there, will think samar dasto samar sukha samar vatsala samar mazdur. When we do bhajan, then gradually, when we mature stage, then we can achieve their mood, which in eternal association, Vaikuntha planet up to Golok Vrindavan. So Jiva Goswami is telling we can get one parts of their one there, not parts of their, we can get their mood. So here Jiva Goswami wants to tell what we get, the mood of their, which they reside in the Vaikuntha planet. So if we reconcile in this way, then we will get their mood. And
no. ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं
वहाँ तीन फॉर्म है हमारे लिए
उस सिद्ध देह है ये प्राकृत है या अप्राकृत जीव का स्वरूप जैसा भी हो अभी लेटेंट अवस्था में होने पर अप्राकृत है अप्राकृत होने से वो बैकुंठी या गोलोक वृंदावन हुआ किंतु अभी कवर्ड है इस जगत में वही परिकर स्वरूप भी जीव का स्वरूप में है बद्ध होने पर भी है मुक्त तत्व करीर है बद्ध अवस्था में भी हम लोगों के अंदर में सिद्ध शरीर है किंतु छिपा हुआ है वो प्रयुज जमाने भगवान की करुणा और इधर साधु भजन दोनों प्रयुज जमाने दोनों जब एक साथ में मिलते हैं तो वो जो परिकर स्वरूप सिद्ध स्वरूप है सिद्ध देह है उस समय में प्रकटित होती है माने विकसित होती है और अनुभव की वस्तु होती है पहले अनुभव नहीं समझ रहे वही तो नित्य सिद्ध जो हमारा यहाँ पर अनुभूति का विषय विकसित होता है तब जीव उस स्वरूप को समझता है अन्यथा अभी तक नहीं समझा
भाव की अवस्था में
इसको प्रयुज जमाने
जब तक वो नहीं आएंगे तब तक
इसलिए वो केवल भाव नहीं मत कहो केवल भाव नहीं वो भगवान के कृपा से नित्य सिद्ध स्वरूप जो अप्राकृत गोलोक वृंदावन का ही है जीवों का स्वरूप अब तब ये नित्य सिद्ध भाव से प्राप्त कर
नहीं
यहाँ है किंतु वो है गोलोक वृंदावन का अब जुड़ना नहीं है वो तो एक ही है जुड़ेगा क्या
तो फिर अलग
अनुभूति
बोले ने जीव उस तक प्रवेश करते हैं
नहीं 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 प्रयुज्य माने जीव का स्वरूप नहीं और वहां पाकर इसका प्रयुज्य माने नहीं कहा भगवत कृपा और इधर साधन ये दोनों जुड़ने पर वो अनुभूति विकास की अवस्था में अनुभूति उसकी होती है
लेकिन फॉर्म वही रह जाएगा
भाव और सिद्ध स्वरूप शरीर मन जो कुछ है अप्राकृत है उस जो शुद्ध सिद्ध देह है वो विकसित होकर के अनुभूति का विषय यहाँ पर
सो व्हिच वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म दिस इज आवर ट्रांसेंडेंटल बट नाउ अनमैनिफेस्टेड फॉर्म बाय कॉन्शियस मास्टर गुरु एंड वैष्णव इट विल मैनिफेस्ट इन आवर हार्ट देन वी कैन रियलाइज दैट्स कॉल्ड अनुभव वेद देन वी रियलाइज इन भाव स्टेज नॉट बिफोर दैट So what is explained in Srimad Bhagavatam Prayujyamane, it will contact, it will manifest. So in this world, the material language could not express transcendental thing, which we want to explain, some fault bound to be there. But who is in transcendental form, they can understand very clearly. But due to our own stage, we are so absorbed in material thing, we could not understand. So when we develop in southern stage, Sadhana bhajan, then you can understand and can realize when we achieve in bhav stage by process master guru and Krishna only manifest in our heart, Shuddha Sarupa, then we understand because which we have our Shuddha Sarupa in constitutional form but in latent position, that is transcendental. When we manifest, then we can realize only that thing. It is called Prayujyamane. So we have to do sadhana and have to pray. when it will contact God, then you can understand. Jasa is Mother Jasoda, Drishtva Parishrama Krishna, Kripaya Sitsa Bandhane. So Mother Jasoda, he was trying to find Krishna, and when Krishna saw her heart level, then his heart melted. Similarly, you have to do sadhana bhajan, under guidance of Guru and Vaishnavas, when they will saw that we are now doing, we want this thing only, not more than that. Asahi dasa visabhanu jaya, then they become causeless merciful, and they will manifest his bhavavasa, then we can understand, realize all these things. Hare Krishna.
एक समझो, जीव का एक सिद्ध देह है। कब से है? जब से जीव का गठन हुआ तब से। तो जीव का गठन कब हुआ? प्राकृत काल में। जब से है तब से जीव का एक सिद्ध शरीर है, देह है, जिसे कि वो भगवान की सेवा करता है या कर सकता है। तो ये सिद्ध देह और जीव अलग अलग नहीं है,
देह विभाग नहीं
वहां, नहीं देह पे न, इस शरीर से तो उसका भेद है,
लेकिन आत्मा में कोई देह
का, आत्मा में देह देही का भेद नहीं। उसका अनुभूति उसकी कब होती है? भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से, और साधन भजन करते 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 वो जो नित्य सिद्ध शरीर या भाव है वही विकसित होकर के अब अनुभव में आता है, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं। एक बात और समझने से ये चीज समझो, प्रयुज जमाने मई तान शुद्ध, क्या बोला भैया, तब नारद जी साधन भजन किया। साधन भजन के बाद में भगवान का उनको क्षणिक के अल्प के लिए दर्शन हुआ, फिर अंतर्ध्यान हो गए भगवान, तो ये छटपट करते आकाशवाणी हुई कि कुछ कषाय तुम्हारे अंदर, जब तक ये कषाय दूर नहीं होता तब तक हमारा दर्शन संभव। हमने तो हरी उत्कंठा बढ़ाने के लिए विशेष रूप में तुमको दर्शन दिया है, अब दर्शन नहीं होगा जब तक कि वो कषाय शुद्ध रूप में दूर नहीं हो जाएगा, वस्तु सिद्धि नहीं हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि समय नहीं होगा, वस्तु सिद्धि हो जाएगी तो तुम हमारा सब समय के लिए दर्शन करेगा, हमारी सेवा करेगा। अब यहां पर नेपतत्व पंचभौतिक माने क्या? पंचभौतिक उनका जो शरीर था गिर गया। अच्छा, नारद जी जो साधक भजन कर रहे थे और अंतिम समय में श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणी जनमान परमाणी च ज्ञानी लोके गीतानी नमानी तदर्थकानी गायन विलज्जो विचरे, असंग विषयों से अनासक्त होकर के बिना जंत्र लेकर के भगवान के आदेश से सर्वत्र भ्रमण करते हुए बस भगवान का नाम और गुण और कथाओं और लीलाओं का अपने गायनों में वर्णन करते हुए विचरण और समय की प्रतीक्षा कर, समय के अनुसार में जब उनका प्रारब्ध कर भगवान की कृपा से जब दूर हो गया तो साथ ही साथ क्या हुआ? नेपतत पंच भौतिक, वो जो नारद जी का जो पांच भौतिक शरीर था वो गिर गया, हट गया। किंतु हम देखते हैं सर्वत्र बिना यंत्र लेकर के वही नारद जो साधन दशा में जैसे दिखते थे वही तो सर्वत्र घूम रहे हैं। तो गिरा क्या? तो उनका पंच भौतिक शरीर था वो गिर गया, हमारे जैसे न क्या हुआ? नहीं, कहते हैं कि सुना चक्रवर्ती ठाकुर भी और वो भी, ये देखो साधन भक्ति का पहला जो ये भाव है कृष्ण की सेवा करना ही, तो कृष्ण सेवा की वासना, ये मूल चीज है। ये साधु संघ से कृष्ण सेवा की वासना, ये क्या चीज है? ये स्वरूप शक्ति की सबसे छोटी माइन्यूट। अब यहीं से क्रमशः साधन, भजन, निष्ठा, रुचि, आसक्ति हो करके स्वरूप स्वरूप सिद्धि और फिर वस्तु सिद्धि हो करके भक्ति। तो पहले से जितने परिमाण में भक्ति आती जाती है, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, उतने परिमाण में जीव का जो स्वरूप है पंच भौतिक भाव हटने लगता है और साथ साथ में चिन्मय स्वरूप आने लगता है। जब नारद जी भगवान के दर्शन करने के बाद में अर्थात स्वरूप सिद्धि में आ गए, स्वरूप सिद्धि में आ गए, वस्तु सिद्धि में नहीं गए, तब वो गायन कर रहे चारों तरफ में, काल की प्रतीक्षा कर रहे। उनका वही शरीर जो था आज भी सिद्ध रूप में हम देखते हैं, उनका कुछ पांच भौतिक शरीर गिर नहीं गया, कोई घटा नहीं। उदाहरण के स्वरूप में हम लोग इसको कह सकते हैं, और जैसे ये बतला रहा था, जितनी जितनी भक्ति का स्टेज बढ़ता जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये दिया है, वो कुछ गोपियां अपने पतियों के द्वारा घर में आबद्ध करती हैं, उसमें से गिरह तीव्रता भूता सुभा ध्यान प्राप्त अच्युता अच्युत मंगला, और उनका भी प्राकृत जो शरीर था वो दूर हो गया। न क्या है उसमें जहो गुणमय के गुण में शरीर को गोपियां कोई मरी की नहीं, तीव्रताप से माने कोटि कोटि संसार के और ब्रह्मांड के जितने कष्ट हैं उससे करोड़ गुना कृष्ण के विरह का ताप है। इससे अशुभ उनका, अशुभ क्या था? मंगल क्षीण मंगला, मंगला माने कृष्ण से विरह में जो कृष्ण की स्फूर्ति होती है उसमें घना सुख होता है, जगत विश्व ब्रह्मांड का सब वैकुंठ सुख को मिलाकर के उसके कोटि गुण करने पर भी उसके हरा। जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ? उसी समय में उनका अशुभ था, अशुभ माने क्या? विरह वाला दुख, वो उनका कोई पाप पुण्य वाला जो नहीं था, ये मत समझ, जो कृष्ण का विरह ताप का था वो दूर हो गया। कैसे? उसी जगह जहां पर उसके पतियों ने उसको बंद कर रखा था उसी जगह कृष्ण आए और उनको आलिंगन पास में बद्ध कर दिया। अब वो तो उसमें से कुछ कुछ कृष्ण के रास में सम्मिलित हुए और जो अभी कुछ कषायत रह गया तो आज दो तीन दिनों में पकने के बाद आम पकता है, सब 50 आम 100 आम पेड़ से निकाल लिया प्रौढ़ होने का, तो एक ही दिन में नहीं पकता, कुछ आज पकेगा कुछ कल और परसों तरसों, पांच छह दिन तक रहता है। ऐसे उनमें से वो जो गोपियां थी दिव्य ताप वाली, कुछ तो नित्य सिद्धा गोपियों के संग से पहले ही रास में चली गई और इनमें जो आरत जो उसमें थी तो कृष्ण के आलिंगन से वो योग्य हो गई और उस रात में रास में न होने पर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रास में मिली और जो बाकी आती गोपियां वो भी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, किंतु हुआ सभी का। एक अशुभ और है उनका जो खत्म हो, क्या? जिनको अपने पतियों का संग नहीं मिला था और नित्य सिद्ध गोपियों का संग मिल गया वो तो रासस्थल, और जिनको बेटा बेटी मिली है और पतियों का संगम हुआ, ये जो अशुभ है भगवान के मिलन में, तो वो क्षीण मंगला और विरक्ताप वो सब धुल गया जो अशुभ था। अर्थात जिनको बेटा बेटी थी उनके स्तन में दूध थे वो सूख गया और बच्चों के प्रति जो आसक्ति थी और पति में वो पार्थिव भाव में आ गई। और वो जब पक गई कृष्ण के साथ वो गोपियां मरी नहीं, गुणमय देह नहीं, माने उनका गुणमय शरीर नहीं था जो त्याग है, वो गोपियां जीवित नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ये तो मर जाती तो अमंगल हो जाता, उनका गुणमय जो भाव था वो दूर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर पंच भौतिक का जो भाव था नारद जी के हृदय में भी वो संपूर्ण रूप से धुल गया। क्यों? गायन करते करते विरह में उन्मत्त हो जाते थे, अश्रुपूर्वक इत्यादि होने लगे धीरे धीरे धीरे। उनका जो ये कसाय था कि हम कहीं निर्जन पन में हम तपस्या करके भगवान को पाएंगे, सात्विक वनवास करके भगवान का भजन करेंगे, मैंने साधु संघ को छोड़ करके ये भाव दूर हो गया। और फिर भगवान का प्रयुज्य माने यही भगवान की कृपा उन पर हुई, उनकी आत्मा विकसित हुई, ये जागतिक भाव सब दूर हो गया और नारद जैसे के तैसे रहे और वो चिन्मय जगत में सब रहे। कभी समझाया किंतु समझना भी बिना कुछ ये सबको अध्ययन और बिना कुछ साधन भजन अनुभूति के लिए विशेष करके यही गुरु की कृपा है। कुछ लोग नहीं समझते, वो समझते हैं कि अपने मन से हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं होगा। साधन भजन जो गुरु किया है उसका फल तो है ना, ये कैसे मिलेगा हम लोग? ये बड़ा पढ़ लेंगे शास्त्र से, याद कर लेंगे, दूसरों को बोल देंगे तो खुद ही तो अनुभूति है। ये अश्रु और पुलक कहां से आएगा? यही सब यही भगवान की कृपा और अपना साधन भजन शुद्ध रूप से हो तो इस जीवन दोनों से मिलने पर उसका विकास होने पर पार्षद ही यहां अनुभूति हो जाएगी। बस इसी का और बातें प्राकृत भाषा अप्राकृत भाषा को व्यक्त नहीं कर सकती, वो भी कुछ साधन भजन करके समझना। गौर प्रमाण
दस एंड डी क्लास ऑन दी 23rd of November 2002 in the evening in Mathura. Hare Krishna.